आगे है सूरत मरियम। सूरत काहफ से सूरत मरियम का सफर आपको बड़ा हसीन लगेगा। एक औरत के नाम पे सूरत, एक तो सूरत निसा में हमने बात की थी कि सूरत रिजाल नाम की कोई सूरत नहीं है कुरान में। दूसरा यहां कहूंगी कि वाहिद और अकेली औरत जिसका नाम इस कुरान में, अल्लाह ने औरत लफ्ज जिसको मस्तूरा भी कहते हैं छुपा हुआ रखा था, लफ्ज औरत का मानी भी छुपा हुआ ही होता है। बिल्कुल अल्लाह सुबहान तआला ने औरतों का तस्करा तो किया लेकिन नाम एक औरत का लिया और वो मरियम है। इनके अलावा किसी का नाम नहीं है किसी औरत। मर्दों में एक अबू लहब, अल्लाह ताला ने उसको एक बुरा सिंबल बना के पेश किया और अच्छे नामों में औरत का नाम। पीछे आपने सूरत नाहल में फेमिनिज्म पे बात की कि कैसे अल्लाह ने शहद की मक्खी से इतना बड़ा काम ले लिया। आज के पारे में हजरत मूसा की बहन का तस्करा हो रहा है, माँ का जिक्र आने वाला है, तो अपने औरत होने पर रश कीजिए। अल्लाह ने औरत की कोख में मर्दों को पाला, औरत नबिया नहीं बनी लेकिन नबी की माँ बनी और वो माँ मरियम थी। और सूरत मरियम आप अपने बच्चों को इस सोच के साथ पढ़ाइए कि बाहर की दुनिया में अक्सर क्रिश्चियंस लोग उनको मिलते हैं जो कहीं ना कहीं भटके हुए और भिटके हुए लोग हैं हक से। सूरत मरियम का सिर्फ तर्जुमा आज के दौर में क्रिश्चियनिटी की सारी मुख्तलिफ किस्मों को जवाब देने के लिए काफ़ी है। मैंने खुद देखी है, जहाज में थोड़ी सी बात करके इंग्लिश का कुरान खोलकर तो सिस्टर को दिया कि आप पढ़ना शुरू कर दें और वो पढ़ के कह रही इट्स सो इंटरेस्टिंग, ये तो बाइबल में भी इतनी डिटेल नहीं, क्योंकि कुरान का मिजाज तो मुख्तलिफ है, वो तो स्टोरी लगती है। अभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अभी आपको ऐसे लगेगा एल्बम के सफ़े खुलने लगे, जैसे कभी किसी दौर में लोग एल्बम बनाते थे अपनी शादियों के, फिर दिखाते ये मामू है, ये चचा है, ये खालू है। आपको सूरत मरियम में अंबिया कराम की स्टोरीज दिखी, कौमों का जिक्र नहीं नबियों का जिक्र है। देखिए एक होता है कससुल अंबिया और एक होते हैं जो अम्बा और रसूल, दोनों में फ़र्क है। अब सूरत मरियम को जब आपने पढ़ना है तो इसमें आपको दो तीन चीज़ों पे बड़ा गौर व फिक्र करना है। और वो क्या है कि पहली बात है कि सूरत कहफ में चार फितने थे, सूरत मरियम में तसलीस का अकीदा। याद रखिए कि मसीह जब हज़रत ईसा दुनिया में वापस आएंगे तो हज़रत ईसा के मानने वाले उनके हाथों मुसलमान हो जाएंगे, और यहूद का मसीह दज्जाल आएगा तो हज़रत ईसा के हाथों मारा जाएगा। तो ये दोनों का रब्त है पिछली सूरत से अगली सूरत में, और इसी तरह से ये मक्की सूरत है और 590 के करीब नाजिल हुई। मुसलमानों पे बहुत जुल्म सितम थे और ऐसे लग रहा था कि जो मुसलमान हुआ वो गया हेड लिस्ट पे। अल्लाह ताला ने इधर मुख्तलिफ तरीके से ये बात पेश की। और सूरत मरियम की एक और खूबी, तख़सीस, खसूसियत, फजीलत लिखी है, ये है वो सूरत जो हज़रत जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में पढ़ी थी और उसके दिल में ईमान आ गया था। पिछली सूरत के साथ बड़ा खूबसूरत रब देख लीजिए। सूरत काहफ की आखिरी आयत क्या है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद और वला युशरिक भी इबादती रब्बी ही अहदा। और इस सूरत मरियम में इसी के अकीदे यानी तसलीस, जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, उसके रद और तौहीद का साबित किया जा रहा है। सूरत काहफ की तमहीद में नजूले कुरान का एक मकसद क्या था, वह युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ये चार नंबर आयत थी, क्या आप उन लोगों को डराएं जो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा बनाते हैं। आज इस सूरत मरियम में बार बार आप ये मजमून पढ़ने लगे हैं कि माँ काना लिल्लाहि यत्तखिज़ मिन वलदिन सुभानहू, यानी वहाँ बात थी यहाँ उसकी दलील आयत 35 आयत 92 में भी मिलेगी। फिर इसी तरह से एक और दोनों में बड़ा प्यारा रखता है कि दुनिया की जिंदगी आरजी और बाकी रहने वाले अमाल आखरत के, अलमालु वलबनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया, आयत 46 काहफ में आपने पढ़ा था। सूरत मरियम में बिल्कुल यही मजमून आपको वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन मरद्दा, थोड़े से अल्फाज के फ़र्क के साथ जाने वाला है। और आप कह सकते हैं कि सूरत मरियम में अकीदा तौहीद को हज़रत ईसा और कुछ दूसरे अंबिया की ज़िंदगी से साबित किया गया। और आखिरी बात कि सूरत तौहा इसके बाद आ रही है, उसका इससे क्या रब्ता है, तो आप कह लें कि सूरत मरियम ईसा की कहानियाँ, उनकी लाइफ हिस्ट्री, और सूरत तौहा मूसा की ज़िंदगी, यानी ये नबियों का एक सिलसिला है जो शुरू हुआ और चल रहा है। और आप इस सूरत मरियम के अंदर से जो अल्फाज को देखेंगे ना, आप हैरान होंगे। मैं कहती हूँ अल्लाह आपको वक्त दे, तौफीक भी दे, हिम्मत दे, जो भी कोर्सेज ऐसे ऑफर्स हों कि जिससे आप कुरान के और करीब हों तो आप उसको इंशाल्लाह महसूस करेंगे। रहमत का लफ्ज़ बहुत आएगा इस बारे में। जैसे आयत 2 में जिक्र रहमती रब्बी का अब्दा हु जकरिया, फिर आयत 16 में आएगा वज़कुर फिल किताब भी मरियम। फिर इसी तरह से जिक्र का लफ्ज़ बहुत आ रहा है इस सूरत में, खास तौर पे सूरत ही की बातें आपको बता रही हूँ। और इसी तरह से नमाजें कैसे ज़ाया होती हैं, यानी औलादों की नमाजों की फिक्र लगनी है आपको, और इस सूरत में वो आयत आ रही है कि जिसमें अल्लाह की ईमान वालों से मोहब्बत का तस्करा है। और पूरी सूरत को अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है आपको लफ्ज़ मरियम से भी मोहब्बत होगी, और ख़ास तौर पे फिर रहमान का लफ्ज़ इधर भी और अगले पारे में भी आएगा। आइए आप ज़रा सा इसको लेकर चलते हैं अपने लिए कि हमने इसे अपने लिए अमल के क्या नुक्ते लेने हैं तर्जमे के साथ। और इसका तर्जमा आपको सुनने के दम दिल भी नहीं चाहेगा कि मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि ये एक स्टोरी है और स्टोरी तो अनइंटरप्टेड सुनी जाती है, बीच में कोई ना बोले ख़त्म ना, यानी ये गुड नाइट स्टोरीज भी बन जाती हैं कुरान की ये सूरतें। तो 19 सूरा है, 98 आयतें हैं, पूरी सूरत इस बारे में आगे पढ़ेंगे और आगे सूरत तौहा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस सूरत की एक और बस खूबियाँ, तो वो कहते हैं ना बच्चे का जिक्र शुरू कर दो खूबियाँ, पहले ही लफ्ज़ देखिए काफ हा या आइन, सबसे लंबा हरूफ मुकत्ता इस सूरत में, ये नोट कर सकते हैं आप, यानी एक सांस में पढ़ें तो टाइम चाहिए इसको पढ़ने को। रुकू नंबर 1 है, 1 से 15 आयात। मुस्तजाबुद दावात कौन, उर्दू में बोल देती हूँ, दुआएं किसकी कबूल होती हैं या दुआएं कहाँ कबूल होती हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए करने वाली बातें। और यहाँ फिर सूरत आले इमरान वाला अंदाज़ आपको इसमें दिखेगा, शुरू होते ही आपको महसूस हो जाएगा कि ये बातें हमने कहाँ पढ़ी हैं। तो आपको मैं भी बता दूँ, यही बातें सूरत आले इमरान में भी पढ़ी थी और वहाँ भी बहुत सी दुआएं थी। तो यहाँ इंशाल्लाह आपको इस बारे में बहुत सारी खूबसूरत सी दुआएं मिलने वाली हैं। आइए देखते हैं, काफ हा या इन स्वात हरफ मुकत्तात हैं, जिक्र रहमती रब्बी का अब्दहु जकरिया, ये है तेरे परवरदिगार की इस मेहरबानी का जिक्र जो इसने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जबकि इसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे मेरे मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है, मेरी बीवी भी वहां है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा। आमीन नहीं कहेंगे आप? कहेंगे नहीं, हमें मजीद बच्चे नहीं चाहिए, बच्चों के बच्चे मांग लें, होते नवासे नस्लों के लिए मांगिए, क्योंकि इस दुआ के नतीजे में आपको पता नहीं कि आगे मिलने क्या वाला है। क्या कहा, क्यों मांग रहा हूँ औलाद जो मेरा भी वारिस और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तो इसे मकबूल बंदा बना ले। आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह हमारे बच्चों को तो अपना पसंदीदा बना ले, लोगों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत डाल दे, आप भी उनसे मोहब्बत फरमाएं। ऐ सक्रिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते, इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई, इतनी जल्दी तो मैसेज का जवाब नहीं आता, एक शहर में रहते हुए जितनी जल्दी आसमानों से जवाब आ गया। ये है मुस्तजाबु दावात लोग, अल्लाह हमें ऐसा बना दे। कौन सा बच्चा जिसका नाम यहया है, नाम के मसले से भी अल्लाह ने निकाल दिया, कि क्या सोचे अब इतने साल बाद बुढ़ापे में 99 ईयर में हाफजा ही कमजोर हो जाता है, क्या नाम रखना, मैं ही रख देता हूँ। हजरत यहया की खूबी को उनका नाम अल्लाह ने रखा है, हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया, यूनिक नाम, शौक बड़ा होता है, उल्टा सीधा रख लेंगे, रखेंगे नया या। जकरिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी भांज और मैं खुद बुढ़ापे के इंतहाई जोख को पहुंच चुका हूँ, तो मांगा क्यों? देखिए खुद ही तो मांग रहे हैं, मिल गया तो कहते क्यों मिल गया। ये इंसानी कमजोरी, ये बशरियत का रंग है नबियों में, उनका इमोशनल पार्ट कि जब चीज़ मिल गई तो कहा ये कैसे हो गई। जवाब सुनिए, इरशाद हुआ के वादा इसी तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है और तू खुद कुछ ना था, मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ। कहने लगे, मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दीजिए। अब कोई इस वक्त कोई प्रेगनेंसी टेस्ट तो होते नहीं थे पॉजिटिव के नेगेटिव, तो कहने लगे अल्लाह दिल नहीं मान रहा, यकीन नहीं आ रहा, इतनी बड़ी खुशखबरी है तो जरा सा कोई अलामत कोई निशानी तो दिखा दे। इरशाद हुआ, तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद अच्छा भला होने के 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सके तुम। क्या गूंगे हो गए थे, एक अरसा तक मैं ये समझती रही थी, तर्जमे से तो यही लग रहा है। और जब कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह की मार्फत मिली तो फिर एक जुमला समझ आया कि जो अपने आप को अल्लाह की नेमतों के बोझ में घिरा हुआ महसूस करते हैं ना, उनकी जुबान बंद हो जाती है। शुक्र के तौर पे क्या बोलती बंद हो गई, ये कह ले अल्लाह की नेमतों का एहसास बंदे को अपनी ज़ात से ऊपर उठाकर सिर्फ अल्लाह की तस्बीह हाथ में लगा देता है। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए और आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। क्या पता चला, जब नेमत मिले तो अल्लाह क्या शुक्र अदा करें। आज के दौर का कोई बिगड़ा हुआ होता तो बेबी शावर रख रहा होता, पार्टी रखता, लेट बेबी कमर पार्टी और बेबी वेलकम बेबी पार्टी, और बच्चा आया ना आया उसके खिलौने आ जाते हैं, उसके नीले और पिंक कलर के कमरे सज जाते हैं। पता चला डिलीवरी में बच्चा चला गया, फिर उन कपड़ों को देख देख के माएँ रोती हैं। लिखिए एक जुमला, नेमत वो जो हाथ में आ जाए, अभी है ही नहीं दुनिया में तो आप उसकी तैयारियां क्यों कर बैठे। आएगा, सब कुछ बन जाएगा, और ख़ास तौर पे फिर आज प्रेगनेंसी के दिनों में पेट के साथ और ऐसी ऐसी हालत में जाके शॉपिंग करना, ऑर्डर देना, बच्चों के नाम लिखना, उनके कपड़े बनाना, क्या आप उन बच्चों को मोटा नहीं कर रहे? मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा और रोना आता है जब जायनमाज़ों पे लोगों के नाम लिखे देखती हूँ। कभी तो बंदा अकल से सोचे, ये रस्म जो दुनिया में क्या बन गई है कि आप बच्चों के नाम उनके जायनमाज़ों पे लिख के देते, और लिखते बिल्कुल आगे है, लिखना है ना तो पाँव की जगह पे लिखाई दे और अपने नाम के ऊपर पाँव रखें। अल्लाह अकबर, इन्नी असर, अल्लाह का भी नहीं लिखे क्योंकि अल्लाह का नाम पाँव में क्यों लिखेंगे। ये जो किबले और जाय नमाज और मस्जिद नबी रोज़े, ये सब दुरुस्त नहीं, प्लेन साफ सुथरी जगह पे नमाज पढ़ें। तो ये जो कल्चर आ गया ना सेल्फ प्रोजेक्शन का, ये पैदा होने से पहले ही उसके लिए कर देते हैं, माँ के पेट में और आप उसका कमरा से जाके बैठे हुए। नहीं, इसी से नस्लों के अंदर खुद पसंदी, खुद नुमाई, मैं मेरी माई आई भैंस, ये सब आ रहा है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो तो कह रहे हैं तस्बीह करो और शुक्र कीजिए और दुआएं कीजिए अल्लाह से। अब बेटा हो गया, देखिए वक्त गुजर गया, बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, अब अल्लाह उनको पैगाम क्या देते हैं, नबुवत उनको मिली। यानी बाप की ज़िंदगी में ही ऐसे लग रहा है कि बेटे को नबुवत की खुशखबरी दी जा रही है इस आयत के जरिए से, ऐ यहया मेरी किताब को मजबूती से थाम ले और हमने उसे लड़कपन से ही दानाई अता फरमाई और अपने पास से शफकत और पाकीज़ की भी। वो परहेजगार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, वो सरकश और गुनाहगार न था। इस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाए। क्या दुआ थी, मांगिए वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकीयों। अल्लाह से मांगने वाले कभी महरूम नहीं रहते, और औलादों के हक में की हुई दुआएं और कोशिशें कभी ज़ाया नहीं होती। सिर्फ दुआओं से नहीं, कोशिशों से अपने बच्चों को याह्या जैसे अखलाक वाला बनाएं। फेथ इन एक्शन के पॉइंट, दुआएं सिर्फ अल्लाह तला से मांगनी है, सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करनी है और अल्लाह से मांग कर कभी मायूस नहीं होना। अब इस किस्से को पढ़कर अपने ईमान को गज़ा देने के लिए आपके मेरे लिए जो सबसे अहम बात है वो क्या है कि अपने आप को तैयार कीजिए इस बात के लिए, क्या कि हमने औलादों की अच्छी तरबियत करनी है। मांगी औलादें अल्लाह से और नाम लगा दी शैतान के, ये तो जुल्म की बात है, ये तो अच्छी बातें नहीं होती। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला कोई नेमत दे उतना उस नेमत को अल्लाह के रास्तों में इस्तेमाल कीजिए, उस नेमत को दीजिए। फिर आप देखिए कि बुढ़ापा और औलाद मांग रहे हैं। आज के लोग कहते लो इस उम्र में तो बच्चे होते ही नहीं, हुए तो अब बुद्धू होंगे, बेवकूफ़ होंगे, बड़ी उम्र की औरत के बच्चा कैसे पैदा होगा। पीछे भी बात हुई आगे भी होगी जाकर, तो क्या पता चला कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। आपका रब बेहतरीन तरीके से आपको अंबिया कराम के किस्सों से बताता है कि आप उम्र के किसी हिस्से में आ चुके हैं, मांग लीजिए, वो दे सकता है। डॉक्टर कुछ भी कह दें, वो तो असबाब की बात करते हैं, ख़ास तौर पे अंबिया कराम के साथ अल्लाह का मामला असबाब के पर्दों को फाड़ कर हकीकत में लाना था। आज भी आपका ईमान इस दर्जे का हो, आपकी मार्फत इलाही इस दर्जे की हो कि अल्लाह आपके साथ वो करे जो किसी को उम्मीद भी ना हो, और ये ईमान की कुव्वत है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी ईमान की ताकत की बात करूँ, कभी किसी के साथ बिल्कुल खिलाफे आदत कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ वो होता दिखे। कई दफ़ा आप नहीं सुनते, बड़ी उम्र में बच्चा हो गया, शादी के 20 साल बाद बच्चा हो गया, 40 साल बाद हो गया, ये हुआ तो पीछे कोई बात होगी। उनका एतमाद, हमारी एक बहुत प्यारी सिस्टर है नॉर्वे में तजवीद कराती हैं और अरब है माशाल्लाह, तो उनके 4 बच्चे हैं, एक से एक अच्छा, अल्लाह ताला उनको जिंदगियां दे। तो वो कहती हैं कि मेरे बच्चे नहीं थे, और बहरहाल जो सारी लंबी स्टोरी है, तो वो कहती हैं कि हम डॉक्टरों के जाते थे। कुछ लोगों को बहुत ही क्रेविंग होती है, कुछ कहते हैं कि नहीं तो ना सही, अल्लाह ने देना दे देगा। तो खैर वो कहती है हमने सब के बाहर के इधर के उधर के। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी डॉक्टर के पास गई, नॉर्वे में थी तो वहाँ डॉक्टर्स बड़े इजीली एक्सेसिबल होते हैं। तो कहती हैं कि वो औरत बड़ी चिड़चिड़ी सी थी, गुस्से में थी, और उसको पता था कि मैं इतनी कोशिशें करी इलाज की, तो उसने आकर एक जुमला बोला। यानी वो जुमला मैं नहीं यहाँ बोलना चाह रही, लेकिन वही जुमला जैसे टाइटैनिक वालों ने बोला था, इसको तो गॉड भी नहीं डुबो सकता। कहती उसने बोला तुम्हें बच्चा गॉड भी नहीं दे सकता, ये जुमला था और भी कड़वे जुमलों का। कहती उसकी बात सुन के जो मेरे दिल पे चोट पड़ी, मैंने आकर रो रो के अल्लाह से कहा कि अल्लाह एक एथियस्ट औरत तेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह रही है, मुझे बच्चा चाहिए। कह रही कुछ दिन गुजरे, महीना में प्रेगनेंट। कहती फिर जब मैं उस बच्चे को लेकर उस पर गई कि ये है तेरा विली, अब तो अल्लाह को मान जा। लेकिन वही बात है कि जिसको नहीं मानना वो नहीं मानते। अफत माओ ना यो मिन लखो, अल्लाह ने कहा तुम सोचते हो उम्मीदें लगाए बैठे हो कि ये मान ले आएंगे, इनके सामने तो अल्लाह ने गाय का वाक्या पेश कर दिया था, ये फिर नहीं माने। तो बहरहाल कभी भी अल्लाह से मायूस ना। आप सबको भी कहूंगी हमारा दीन बहुत प्यारा दीन है, पर उम्मीद रही है हिदायत से दूर लोग हैं हिदायत पे आएंगे, दिलों में नफरत अल्लाह मोहब्बत डालेगा, आपकी जिंदगी में मायूसी तो रहेगी नहीं। लेकिन ये खूबी मिलती है कुरान से जो, जितना कुरान पढ़ते जाएंगे जिंदगी में आंधियां आएंगी तूफान आएंगे, आप कहेंगे किधर आई मुझे तो नहीं पता, आपके दिल पे नहीं कोई सदमा आता, अल्लाह पहले ही आपके दिल पे हाथ रखवा देता है और फिर कोई गम की खबर आपको सुनवाता है। तंबिए कराम की ये जो मिसालें हैं ना, ये आपको ईमान का फर्नेस बनाती हैं। और अल्लाह अंबिया कराम के साथ ज्ञान जुजल बातें क्यों करता था, ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह वाले नाकाम नहीं होते। कभी आप अल्लाह से इस तरह मांग के तो देखें कि अल्लाह मुझे दुनिया में महरूम ना रखना, ताकि लोग देखें कि इनके साथ अल्लाह का मामला कितना अच्छा है, ये फितना ना बन जाए या आजमाइश ना बन जाए उनके लिए। तो आप देखिए कि हजरत जकरिया ने छुपी सी आवाज़ में अल्लाह से मांगा, इसमें जो लफ्ज़ है ना वो बड़े प्यारे, निदान खफिया खुफिया खुफिया चुपके चुपके, अल्लाह ने उसको पूरी दुनिया के इंसानों के सामने खोल दिया। अल्लाह से चुपके चुपके रात की घड़ियों में मांगी, ये रमजान की रातें, ये सहरियां, ये तहज्जुदें, ये छुपी आवाजों में रब से मांगी, ये मुस्तजाब दावत बन जाए। हैरत अंगेज तरीके से दुआ कबूल हुई। यहाँ से आपको दुआ की असल पता लगती है, सच्ची दुआ लफाजी का नाम नहीं है, कलाबे मिलाने का नाम नहीं है, सच्ची दुआ असल में उस यकीन की उस बेताबाना इजहार का नाम है कि मेरा रब सब कुछ कर सकता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो साहिब कुन फयकून है। सारा इख्तियार जब आप अल्लाह को दे देते हैं ना, तो वो भी अपना सब कुछ दे देता है, फिर उसको देंगे तो मिलेगा। और सच्ची दुआ का सारा रुख एक अल्लाह की तरफ होता है। आप कह सकते हैं कि सच्ची दुआ सबसे ज़्यादा उस वक्त उबलती है जिस वक्त आप अकेले होते हैं, जब कोई दूसरा आपके पास नहीं। और ये रात के सेशंस में हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जबकि कोई दूसरा नहीं होता, वो तो हर वक्त ही आपके पास है। और आप ज़रा सा नोट कीजिए, अब आप में से किसी को अगर रश्क आ रहा है ना अल्लाह अकबर कबीरा हज़रत ज़करिया पे, तो आप कहते हैं कि हमारी क्यों नहीं होती, तो लिखिए जुमला। और ये जुमला अगर आपको अल्लाह के रास्ते का अंसार बना दे ना, दाई दीन बना दे, अंसार उल्लाह बना दे, तो आप सर सजदे पे रखिए। ये उस बंदे की ज़ुबान से निकली हुई दुआ थी जो दीन का मिशन चलाते हुए बिल्कुल बूढ़ा हो गया, हिम्मत नहीं हारी। लोग अपने बच्चों के पीछे बूढ़े हो जाते, खप जाते, रुले जाते, और खानदान पूरे में उनको कोई नहीं दिख रहा कि जो इनके मिशन को आगे जारी रखे। तो एक तरफ अपना इज्स है और दूसरी तरफ मिशन की अहमियत, ये दोनों एहसास उसकी जुबान पर जब इस दुआ की सूरत में आए, तो आप लिखिए एक जुमला दिल की तख्ती पे लिखिए। आप कह सकते हैं कि महज एक बेटे की दुआ नहीं थी, बल्कि इस बात की दुआ थी कि अल्लाह मुझे एक ऐसा लायक शख्स मिल जाए जो मेरे बाद मेरे इस पैगंबराना मिशन को जारी रखे। और आप पता है कि इस तालिब इल्म जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये रूहानी औलाद होते हैं, अपने बच्चे पे मान बहुत होता है, तो अपने स्टूडेंट पे मान बहुत होता है। अगर उस्ताद की बात बुरी लगे और बंदा बददिल हो जाए, तो मान लीजिए कि आप रूहानी तौर पर उसको उस्ताद नहीं मानते। अल्लाह एक औलाद दे और वो आपकी फरमा बरदार हो कि ना हो ये नहीं पता, लेकिन अल्लाह ऐसे दीन वाले को ऐसे ऐसे प्यारे बच्चे दे देता है कि जो तन्हाइयों में तो क्या सब जगह उन्हीं के बारे में सोचते हैं। और मैं जब इनको पढ़ती हूँ आयतें जो हजरत यहया की खूबियों की हैं, मैं सोचती हूँ कि लोगों को औलाद मिल भी जाती है कभी हैंडी कैप, कभी बिगड़ जाती है, लेकिन जब अल्लाह के दीन के काम करने लेके अल्लाह दुआ कबूल कराता है ना, तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबियों वाला बच्चा। आप जरा सोचिए ना कि उनके जिस्म में रह क्या गया होगा, बीवी में कैल्शियम कितना होगा, आयरन की कितनी कमी होगी, उसकी कमर में कितना को दर्द होगा कि वह दर्द सह सह सके। लेकिन एक शख्स जो सारी तक बूढ़ा हो गया, शहीब, अल्लाह ने उनके बुढ़ापे को भेज दिया कि सर शोले मारो, आग लगी हुई है सर में, बीवी पहले भांजती है बूढ़ी भी है, बात तो गैर मामूली है। लेकिन जकरिया को इस खुशी पर जो ताज्जुब होता है, मिलने वाली नेमत चूंकि गैर मुतवक्के थी, वो एहसास से जुबान बंद हो गई। अपनी तारीफें छोड़े, फुलां डॉक्टर से इलाज कराया है, फुलां किया है, फुलां कर सबर करके अल्लाह के रास्ते के काम करें। और यहाँ लिखा है ना, आगे जाइए, मैं आपको आगे वाली आयतों का नंबर नहीं देना चाह रही, इन्हीं का जिक्र आना है, जकरिया और उनकी बीवी। और अल्लाह कहते हैं, ये भाग भाग में मेरे रस्तों में काम करते थे, फिर मैंने इनको यहाँ दे दिया। लोग डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, छोड़ दें डॉक्टरों को, अपने जिस्म को क्यों छलनी बना रहे हैं? इतनी सुइयां लगवाने के बाद आपके अंदर जिस्म में दीन के लिए काम करने की हिम्मत कहाँ रहनी है? सब्र और शुक्र से बड़ा इलाज कोई नहीं है। आपके जिस्म में ताकत होगी, अल्लाह देगा। और आप देखिए, आप कहते हैं बूढ़े माँ बाप से बच्चा कैसे हो गया, तो ये तय कि आदम के तो अम्मा बाप भी नहीं थे, एक मौजजा था वो। तो ये अल्लाह ताला बूढ़े माँ बाप हो या जवान हो, बात यह है कि अल खालिक वो है, क्रिएटर वो सब है। अल्लाह ताला ने कैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस दुआ को भाग लगा दिए, और जब वो बच्चा पैदा होने वाला आया तो जुबान बंद। देखो ना, हम होते तो सोशल मीडिया पे अपने प्रोफाइल पर डाल देते अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट, और आज जो इस पे गंदगियां दिख रही हैं, मुझे किसी ने बताया, यानी पहले छुपाते थे, बच्चा पैदा होने वाला, घर के मर्दों तक को नहीं पता होता था, बच्चों को तो क्या बताना। और आज मैं आपको तरीके ना बता दूं जो मुझे किसी ने बताया, कि आज के दौर में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए तो जो हमारी जनरेशन है करती हैं, वो क्या करती हैं? अल्लाह बचा के रखे, अल्लाह नेमतों के फ्लॉन्ट करने से और उसके इजहार से और बचाए। तो बात यह है कि अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह ने बच्चा वो दिया जो बचपन से, अल्लाह कहते हैं उसके अंदर समझ थी, उसमें गुदास था। किसी ने बचपन में कहते हैं याह्या को कहा आओ खेलें, तो कहने लगे हम दुनिया में खेलने के लिए नहीं आए। जीनियस बच्चा, अल्लाह ने उसका IQ लेवल कितना बुलंद कर दिया, क्योंकि वो नफ्सियाती गिरों से आज़ाद थे। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनके ऊपर दुनिया में भी रहमतें होती हैं और आखिरत में होंगी। अब ऐसी ही एक औरत की कहानी और एक माँ बेटे की कहानी पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये पारा इमोशनल पारा है, जज्बात के ऊपर है, दिलों पे लेने वाला है, दिमागों पे नहीं। हजरत मरियम और उनके बेटे का किस्सा, आयत नंबर 16 से 40। माँ और बेटे का बेमिसाल किरदार। वस्कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा। और ज़रा सा हजरत मरियम के बारे में दिल में महसूस भी कीजिएगा कि अगर उनकी जगह आप होते तो क्या होता, और कितनी बड़ी आजमाइश थी एक औरत के ऊपर, क्योंकि औरत की सबसे कीमती चीज़ इज्जत होती है, और उस औरत की इज्जत पे ही हाथ पड़ रहा है। कैसे? इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान कीजिए, जबकि वो अपने घर वालों से अलहदा होकर मशरक़ की जानिब में आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने इसके पास अपनी रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो इनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। हाईलाइट करें, अच्छी बच्चियाँ, कुंवारी बच्चियाँ तन्हाई में किसी मर्द को देखकर ऐसे ही हौसबिल्ला पड़ती हैं जैसे मरियम ने। और आज मरियम अलैहिस्सलाम से नस्बत रखने वाली हर लड़की के लिए यहाँ पैगाम है कि लिविंग टुगेदर का क्रिश्चियनिटी में भी कोई तसव्वुर नहीं, इस्लाम में कहाँ। और आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे का पैदा होना क्रिश्चियनिटी में भी कोई चीज़ नहीं है जिसको आज पेश किया जाता है। अगर नाम मरियम से जोड़ते हैं तो फिर देखिए काम वो वाले मैरी वाले है कि नहीं है। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। उससे भी बड़ी खबर सुना दी, पहले तो एक गैर मर्द को तन्हाई में देख के डरी, अब सिंगल मदर बनने लगी है तो क्या होगा। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक न लगा और ना मैं बदकार हूँ। रिसोर्सेस, आप देखिए कि समझदार खातून थी, ऐसी नहीं थी कि बेवकूफ़ और बुद्धू खातून थी, उनको फितरत के तरीके मालूम थे। कहने लगी, ये नहीं हो सकता। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। यानी अल्लाह इस्बाब के जरिए बच्चा देता है, वो किसकी अकल में आता है? इज इट पॉसिबल? अगर हम अपनी आंखों और मुशाहदे से ये ना दिन रात देखें तो कभी माने का बच्चा पैदा हो सकता है? तो जो रब इतने नामुमकिन तरीके से हर रोज लाखों बच्चे पैदा करवा रहा है, तो अगर इन सारे असबाब के पर्दों को हटाकर वो मरियम को बगैर शौहर के बच्चा दे दे तो ये कौन सी बड़ी बात है? बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। उनको नहीं ख्याल आया कि अबॉर्शन करा दो, उनको नहीं ख्याल आया कि कोई ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आज की दुनिया दिखा रही है। आज जिन नस्लों को हम माशरों में पैदा करके छोड़ के जा रहे हैं ना, वहाँ अब उनके स्कूलों में ये चीज़ें, इनके अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। वो कहते हैं ये बच्चे का हक है। प्यूबर्टी की एज के बाद अगर बच्चे को अपनी ये ख्वाहिश पूरी ना करने दी जाए तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, उसको ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब स्कूलों में ये अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और आने वाले दौर के तकाजे जो है वो तो अल्लाह माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वो औरत अकेली चली गई, दूर चली गई, कि अब मैं क्या करूं, अल्लाह की इस आजमाइश को कैसे निभाऊं लोगों से दूर। फिर डरते थे, उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। मेरा अल्लाह, ये जुमला उस वक्त हर औरत बोलती है। कितने हार्ट अटैक इकट्ठे होने से ज्यादा एक दर्द है। तो औरत उस वक्त ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के करीब है, लेकिन आम औरतों को तो उस वक्त फिर अप्रिसिएशन का कुछ ना कुछ शौक होता है ना कि अभी माँ बनूंगी तो फिर कितनी मुबारकें और कितनी खुशियाँ होंगी। लेकिन मरियम को तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। ज़रा सा बीबी मरियम को जहन में लगी, ना माँ पास, ना सास पास, ना टोकरी पकड़ा हुआ शौहर पास है, और ना वो सारे जो बेलून्स लेके बैठे हैं कि बच्चा आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या कहती हैं, हाय मैं इससे पहले मर गई होती पर लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। इतने में उसे नीचे से ही आवाज़ दी, क्या जुर्दे खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव के तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला कि तेरे सामने तरोताज़ा पक्की खजूरें गिरा देगा। कोशिश करना इंसान का काम है। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा रखा है, आज मैं किसी से बात ना करूंगी। अभी इस जुमले पे मैं बात करूंगी आपसे। अब ईसा अलैहि सलाम को लिए हुए अपनी कौम के पास आई, सब कहने लगे मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। यदि लोगों की आदत है बगैर सोचे बोलने लगते हैं ताने और इल्जामात। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था ना तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क्या कहा? सब कहने लगे कि लो भला, हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। नोट करिए ये जुमले, दीजिए क्रिश्चियनिटी के मानने वालों को। जीसस गॉड नहीं, जीसस सन ऑफ गॉड नहीं, बल्कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया और इसने मुझे बाबरकत किया जहाँ भी मैं हूँ और इसने मुझे नमाज और जक़ात का हुक्म दिया जब तक कि मैं जिंदा हूँ। है आज क्रिश्चियनिटी में नमाज और जक़ात? ये आयत लिख लीजिए। क्रिश्चियनिटी की असल में नमाज और जक़ात मौजूद थी, और क्या काम करने थे उनको भी और आज वालों को भी। और इसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है, सिर्फ मदर डे नहीं 365 डेज, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। ये है सही वाक्या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का। यही है वो हक बात जिसमें लोग शक और शुबे में मुब्तला हैं। कितनी क्लैरिटी इन आयात में। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो बिल्कुल पाक जात है। वो तो जब किसी काम के सर अंजाम देने का इरादा करता है तो इसे कह देता है कि हो जा, और वो उसी वक्त हो जाता है। ईसा भी तो कलमा कुन से पैदा हुए। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे, बस कुफार के लिए वईल है एक बड़े सख्त दिन की हाजिरी से। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जालिम लोग सरीख गुमराही में पड़े हुए हैं। तो इन्हें रंज और अफसोस के उस दिन का डर सुना दीजिए जबकि काम इंजाम को पहुंचा दिए जाएंगे और ये लोग गफलत और बेईमानी में ही रह जाएंगे। सोचिए जरा क्या क्यामत का मंजर खींचा गया। खुद जमीन कर तमाम लोगों के वारिस हम ही होंगे और सब लोग हमारी ही तरफ लौटा दिए जाएंगे। क्या पता चला? ईमान से मुतल्लिक एक आयत है 39 मरियम। وانذرهم يوم الحسرت اذ قضي الامر. نوٹ کر لیں اس آیت کا نمبر، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ. اس پہ لیکچر ہے، 9 آیتیں قرآن کی جمع کر کے، آئی تھنک سو 9 یا 11، اور 2 دفعہ یہ ڈیلیور ہوا، ایک دفعہ دہرا آباد سے اور ایک دفعہ آپ کے اسی اٹلانٹا سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہاں سے ہماری پوری اسبیل الجنہ کلاس نکلی تھی. آج بھی اللہ کرے کہ اس پارے کو سننے کے دوران آپ جتنے بیٹھے آپ سب اسبیل الجنہ کو رجسٹر کر لیں. تو کیا کہا؟ یوم الحسرہ. اس میں آپ کے لیے جم کیا ہے، چراغ ہدایت سے دوری غفلت کا سبب بنتی ہے. یہ ہدایت کا چراغ، یہ قرآن کا نور، اس کو اپنے قریب کرتے جائیے، آپ کو اچھے برے کا فرق ملے گا. ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ ہوتا. آپ مریم بنیے، اللہ آپ کے بیٹاؤں کو عیسیٰ کی طرح بنائیں گے، اور باپ زکریا بن جائیں تو بیٹے یحییٰ ہوں گے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی مرضی کا بنا دے، جیسے اللہ نے حضرت زکریا کے بیٹے کو بنایا. قیامت کے دن خاموشی بھی تلے گی. آج اس صورت میں آپ کو خاموشیوں کا تذکرہ ملے گا. آپ کہتے ہیں بولنے سے بات بنتی ہے، خاموش رہنے سے بنتی. بی بی مریم سے کیا کہا؟ چپ کر جاؤ، نہیں بولنا، ہم بولیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 2 چیزیں اعمال نامے میں بہت بھاری ہوں گی، طول الصمت اور حسن الخلق، طویل خاموشی اور حسن اخلاق. تو یہ تلے گا جی، تلے گا. کب؟ جب غصے میں آپ چپ ہو جاتی ہیں تلے گا، جب آپ کسی کو تانا دینا چاہتی پھر آپ چپ ہو جاتی ہیں، جب کوئی آپ کو کسی کا کوئی راز بتاتا ہے آپ اس کا پردہ رکھ لیتی ہیں، چپ لے گا. تو پہلے دور میں کہتے تھے کہ بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا. ورڈز آر سلور اینڈ سائلنس از گولڈ. تو خاموش رہیے. نجا من سمت، اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ جملہ. آج بولنے کا رواج ہے، اس کو کہتے ہیں سرسرا. خوب بولو، خوب بولو، خوب بولو. تو عمل کے نقطے، فیتھ ان ایکشن، اپنی اولاد کو بچپن سے ہی کتاب سے جوڑنا، اور قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچنے کے لیے آج ہی سے نیک اعمال کرنے ہیں. اور خاص طور پہ پھر ادھر جو باتیں ہم پڑھ سن رہے ہیں، جس میں ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ ہم سب اس کو پڑھتے سنتے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے مالک، تو ہمیں ان نبیوں اور ان نبیوں کے گھرانے والوں کے نقش قدم پہ چلا. کیا آپ کو یہ خوبصورت سٹوریز نہیں دکھ رہی؟ کیا ضرورت ہے ڈرامے فلمیں دیکھنے کی اور اس کے اندر اخلاق کو اور اپنے دین کو بگاڑنے کی؟ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بی بی مریم کا کردار اپنی بچیوں کو دیجیے. الحمدللہ یہ بہت فیمس نیم ہے، مسلمانوں میں بھی، کرسچنز میں بھی، لیکن کردار، پرسنالٹی، شخصیت، ان سب کو دیجیے. اور کس طریقے سے وہ ایک عورت غیر شادی شدہ ہو کر جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ آزمائش تھی. آج امت مسلمہ میں کہیں ایسے وقت نہ آ جائے. پھر اس میں دیکھیے کھجوریں کھانے کا تذکرہ ہوا، تو کھجوروں کو کھانا ایسے وقت میں عورت کو فائدہ دیتا ہے. اور یہ کہنا کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی، یہ ان کی حیا اور ان کی سچائی کی دلیل ہے. اور آپ دیکھیے کہ اتنی نازک آزمائش میں تھی بی بی مریم، تسلی دینے والا پاس کوئی نہیں، اور اللہ نے اس وقت فرشتوں کو بلایا. یہی بات آج بھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو استقامت کے درجے پہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پہ صبر شکر کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دفاع خود کرتا ہے. اور جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتاتی ہوں، آیت 26، انی نظرت للرحمانی صوم، کہ سیام نہیں صوم رکھنا ہے. اور صوم وہ ہوتا ہے جس میں زبان بھی بند ہوتی ہے. پھر یہ وہ 3 قسم کے روزے دار، جو ایک عام، ایک خاص اور ایک خاص الخاص، ان کا تذکرہ ہمارے day 2 میں ہوا تہجد کے سیشنز میں. تو اللہ سے دعا کیجیے، اللہ میں چپ کے روزے رکھنے والا بنا دے. بولیے چپ رہنا ہے، کیونکہ چپ رہنا آپ کو کتنے فتنوں سے بچاتا ہے. ہم ہوتے تو کہتے صفائی پیش کرو، بچہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ جو خود خاموش رہتے ہیں اللہ ان کی بے گناہی ثابت کرتا ہے. پیچھے اللہ کا یہ اصول آپ نے حضرت یوسف کے بے گناہی میں بھی سنا، کہ جب وہ خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ گھر میں سے کسی گواہ کو کھڑا کر دیا.